نہایت ہی اہم موضوع سر کی جوئیں, اور خاص طور پر میں خیال سے اس کی ٹارگیٹ جو رہتے ہیں اصل میں بچے رہتے ہیں, بھاگ بھاگتے دوڑتے ہیں, کھیلتے کودتے اسکول وغیرہ میں, کہیں نہ کہیں سے گھر میں ضرور لے کر آتے ہیں,
جی
رہتا ہے سب کے ساتھ. کیا ہے یہ سر میں جوئیں ہوتی کیوں ہے, بتائیے ہمیں.
میڈیکل ٹرم پیڈیکیولوسس کہتے ہیں, اور پیڈیکیولوسس جو ہے صرف سر کی جوئیں تک محدود نہیں ہے. اب اس کی جو جسم پہ ہیومن جو سپیشیز ہیں وہ بھی تقریباً 500 سے زیادہ کی ہیں, اور اگر آپ جانوروں میں اور انسانوں میں ملائیں تو ان کی جو سپیشیز ہیں وہ تقریباً 5000 سے زیادہ ہیں.
5000,
جی. اور جو چیز سر کی جوئیں, بدن کی جوئیں اور پیوبک ہیئر کی جو جوئیں ہیں ان میں فرق ہے, لیکن ہم ہیڈ لائس پہ زیادہ کریں گے کیونکہ یہ زیادہ کامن ہے. ہمارے جو بچے ہیں اور بچوں والے گھروں میں جو پیرنٹس ہیں ان کو پھر یہ پرابلم جو ہے وہ درکار رہتا ہے. ابھی جو اس کے جوئیں تقریباً 2 سے 3 ملی میٹر کی ان کا سائز ہوتا ہے, اور تقریباً ان کے جسم میں 6 ٹانگیں ہوتی ہیں جس سے یہ ہیئر شافٹ کو پکڑ لیتی ہیں.
اتفاق سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں دکھایا تھا کہ جوئوں کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کس طرح سے ایکروبیٹک حرکتیں کرتے ہوئے ایک بال سے دوسرے بال پر جاتی ہے.
جی بالکل, وہ ایسے ہی ہے, منکی منکی لائک ان کا. شکر کریں کہ ان کے یہ ونگ لیس ہیں, یہ ان کے پر نہیں ہیں, ورنہ یہ اڑ اڑ کے تباہی مچا دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہے, ایک قسم کی رحمت پلس پوائنٹ ہے کہ یہ اڑتے نہیں ہیں, اور فیڈ ان کا ہیومن بلڈ ہی ہے. اگر یہ 2 دن زمین پہ گریں یا ہیومن باڈی کے ساتھ نہ رہیں تو یہ مر جاتی ہیں. تو دو دن ان کا جو ہے وہ ڈائنگ ٹائم ہے وداؤٹ ہیومن بلڈ, اور اوور آل جو ایک جوں کا لائف سائیکل ہے وہ 30 دنوں میں پورا ہو جاتا ہے. ایک کنڈا جو ہے وہ تقریباً 1 ہفتے سے لے کے 12 دن لیتا ہے نمف بننے میں, پھر اس کو مزید 1 ہفتے سے لے کے 12 دن درکار ہیں اڈلٹ ہونے میں, پھر وہ ایک اڈلٹ جو ہے وہ اپنا لائف سائیکل مزید 30 دنوں کے اندر تک سروائیول ٹائم کے اندر وہ پورا کرتا ہے, اور ان کا کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے ہیومن بلڈ کے. تو یہ جو ہیڈ لائس ہیں یہ تو آپ کے اسکیلپ کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کا لائف سائیکل بھی جو شافٹ آف ہیئر ہے, لینتھ آف ہیئر ہے, اس کے ساتھ ہے. جو باریک چھوٹے انڈے ہیں وہ اسکیلپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اور اس لیے ان کو ڈائگنوز کرنا اور ان کو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ لگتا ہے کہ ڈینڈرف ہے, یا وہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ہیئر ڈرائر ڈرائر اسپریئر جو ہے اس کی ڈراپلیٹس کی طرح, کیونکہ جب ہیئر ڈرائر اسپرے جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے تب بھی وہ وائٹ کلر کا لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہے. پھر جو وہ نمف بنتا ہے وہ تھوڑا سا موو اوے ہو جاتا ہے اسکیلپ سے, اور پھر وہ جب اڈلٹ ہو جاتا ہے تو فریلی اس کی
گھومتا پھرتا ہے,
وہ پھر گھومتا پھرتا ہے,
سیر سپاٹے کرتا ہے.
جی بالکل, اس طرح سے.
اچھا یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ ہوتی کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ گندگی نہیں نہانا, صفائی کا خیال نہیں رکھنا, یا کوئی اور خاص وجہ ہے کہ یہ جوئیں جو سر میں لگتی ہیں؟
جو سی ڈی سی کی ہیں, سی ڈی سی کلیئرلی کہتی ہے کہ ہائیجین کا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایٹ. پھر وہ یہ بھی کلیئرلی کہتی ہے کہ پیٹس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایٹ. تو لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹروورشل ہے, کیونکہ دیکھیں ہیڈ لائس جو ہیں وہ اگر جو سر کی جوئیں ہیں وہ مختلف ہیں جسم کی جوئوں سے. جسم کی جوئیں کو کریب کہتے ہیں, اور بلکہ جو سر کی جوئیں ہیں اور جسم کی جوئیں ایک طرح سے ان کی شکلیں ملتی ہیں, جبکہ جو پیوبک جوئیں ہیں وہ کریب کہلاتی ہیں, اور وہ بہت زیادہ مختلف ہیں. تو یہ جو ان کا جو جسم کی جوئیں ہیں اور ان کے اندر اور اینیملز کی جو فلائز ہیں ان میں ڈیزیز کا ٹرانسفر ہونا کامن ہے, لیکن سر کی جوئوں کا نہیں ہے. تو ایز فار ایز ہم یہ کہہ سکتے ہیں عام آسانی کے لیے کہ سر کی جوئیں لیسٹ لیتھل ہیں بنسبت جسم کی اور پیوبک کی.
ایک چیز آپ کو بتاتے چلے مزیدار سی ہے کہ اس سلسلے کا ایک ہیش ٹیگ بھی چل رہا ہے کافی, یعنی اب تو تھوڑا کم ہوا ہے اس کا رجحان, لیکن بہت زیادہ اس پر توجہ دی جا رہی تھی. وہ یہ تھا کہ آپ جوؤں کے بارے میں پڑھنے سے آپ کے سر میں کھجلی ہوتی ہے, یہ سلسلے کا ایک ہیش ٹیگ ہے. تو یہ کافی دلچسپ چیز ہے, کافی,
اور ہم اپنے تجربات یہاں پر یہی شیئر کر رہے تھے کہ سچ میں یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے یا پڑھا جائے تو خود بخود سر میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے. میں خیال سے انسان کی نفسیات کا اثر کوئی
کنٹیجیس ہے, جیسے آپ کا فلو ہے, اور ہنسی مسکراہٹ بھی کانٹیجیس ہے, یوننگ کانٹیجیس ہے.
بالکل, یہ تو میں مانتی ہوں,
سائنس اینڈ ریسرچ ہیز پروون اٹ کہ کانٹیجیس ہے, اور اسی طرح پیڈیکیولوسس جو ہے وہ بھی کانٹیجیس ہے.
اچھا, सही
तो ये बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह हम तस्वीरें बनाने के दौरान सर के साथ सर लगाते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है. जानवर अब इकट्ठे जब कम्युनिटी में होते हैं तो वो सर के साथ सर नहीं लगाते, लेकिन इंसान जब सर के साथ सर लगाते हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस भी कर रहा होता है.
सही, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि इत्तेफाक से अभी मेरी बेटी जब कुछ महीने पहले इसने अपना स्कूल स्टार्ट किया तो एक लिस्ट दी गई थी, उसमें चीज़ों के बारे में लिखा गया था, और लिखा गया था कि आप जो हैं वो हफ्ते में दो बार तकरीबन अपनी बच्चे का जो बेडशीट है उसे ज़रूर तब्दील करें. एक बहुत बड़ी वजह है जुएं इससे हो सकती हैं. ये बात किस हद तक हकीकत रखती है?
देखिए, बड़ी एक अफसोस की बात है कि अभी स्कूल को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है पर्सनल हाइजीन के एक सजेशन देने के लिए घरों में और माओं को कि अपनी बेडशीट्स, अपनी लिनन, अपने टॉल्स, अपने जो ज़रूरत की और अंडर गारमेंट्स हैं उनको चेंज करें. देखिए, हेड लाइस और बॉडी लाइस में फ़र्क का पता नहीं चलता. जैसे मैंने आपको बताया कि हेड लाइस जो है वो लीस्ट लीथल है बनिस्बत बॉडी लाइस के. नेपोलियन ने अपनी जंग हार दी थी क्योंकि उसकी 10,000 की फौज जो है वो उसको टाइफस हो गया था बिकॉज ऑफ बॉडी लाइस. तो और वो जो है वो रशिया में इन्वेड नहीं कर पाया था. तो हिस्ट्री मौजूद है इस बॉडी लाइस की वजह से लोगों ने जंगे हार दी हैं.
बिल्कुल.
तो आप देखें कि जो बॉडी लाइस है जिसम पे तो किसी के बाल होते हैं और किसी के बाल नहीं होते हैं, तो उनका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो उनके क्लोथ्स के साथ है.
अच्छा.
कपड़ों में उनके अंडे होते हैं, कपड़ों में ही उनके जो है वो रहते हैं. और आपने कपड़े अपने बदलने हैं, कपड़ों को जब इस्तेमाल करना है झाड़ के इस्तेमाल करें दोबारा जब आप इस्तेमाल करते हैं. बेड शीट, स्टॉल है, जब भी वो आप इस्तेमाल करें उनको एटलीस्ट जब तक साफ हैं झाड़ के अपने साथ मतलब उसके इस्तेमाल करें. और जो इसकी प्रिवेंशन के लिए है वो टेम्परेचर है, क्योंकि जो इसकी ये टेम्परेचर सेंसिटिव पेस्ट है. तकरीबन 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसमें ये डिहाइड्रेट होके मर जाते हैं, और अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसमें भी ये जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. इवन इट जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो अंडों को भी किल कर देता है.
अच्छा.
तो जहाँ तक बेडशीट के बदलने और क्लीनिंग का है तो बिल्कुल कारपेट, फर्नीचर, जो लेदर है, इन सब को हॉट ट्रीटमेंट, हॉट वॉशिंग, यानी कि सिंपल जो है अगर ड्राई क्लीनिंग करनी है तो उसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि वो 54 से ज्यादा हो,
उबलता हुआ पानी हो. ठीक है.
और इसी तरह जो है वॉशिंग विद द हॉट वाटर हो.
ठीक है.
तो डेफिनेटली ये जो है ये अच्छी रिकमेंडेशन है अगर जो है वो
इस पर अमल कर
बिल्कुल,
सके.
बिल्कुल.
अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी. चले, हेड लाइस के हवाले से तो हमें इतनी जानकारी है कि सर खुजलता है, और जिस तरह आपने कहा कि वो बालों पर दिख जाते हैं हमें कभी, या फिर बारीक कंघी का इस्तेमाल करो तो पता चल जाता है. लेकिन ये जो बॉडी लाइज है इनके हवाले से मुझे थोड़ा बताइए, इसकी किस तरह से है, कोई खास अलामत खुजलता है बदन, क्या होता है, इरिटेशन होती है?
बिल्कुल इसी तरह से है कि खारिश होती है, बकायदा जो है वो आपको मूवमेंट भी, टिकलिंग मूवमेंट आपको फील होगी स्किन के ऊपर, और इसी तरह आपको विजुअली नज़र आएंगे. और ये मतलब जब आपके जिस्म में लाइसिस आ गई हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है. उस टाइम पे आपको डेफिनेटली जो है वो एक पूरे तरीके से पेस्ट कंट्रोल एक ट्रीटमेंट करनी होगी, और अंडर तबीब, अंडर मेडिकेशन करनी होगी, और मेक श्योर करना आपका रहने की जगह आपकी बेड शीट्स को शेयर ना करें, वो भी प्रॉपर तरीके से आप उसको स्टरलाइज करके दोबारा से रीयूज़ करें, एक दफ़ा पहनने के बाद दोबारा ना पहने, और जो आपकी कारपेट है और उन सबको टाइम जो है वो अवॉइड करें, और फिर सूरज की रोशनी मैक्सिमम आपके घरों के अंदर तक आनी चाहिए. अगर उस टाइम में आपके घर में कोई पेट है तो आप उसको भी चेक करें, उसका भी पेस्ट कंट्रोल करवाएं कि वो, और अवॉइड करें कि उस टाइम पीरियड में जब तक वो घर आपकी सिचुएशन जो है क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप उसको पेट को भी अवॉइड करें.
25% जो बच्चे होते हैं शुमाली अमरीका में और आयरलैंड जैसी तरक्की याफ्ता जगह पर, वहाँ पर बच्चे जो हैं बुरी तरह उनको सर की जुएं हैं, और हत्ता यानी बाज़ स्कूलों में ये रेशियो जो बताया गया है, हम आपको बताते चलें, इंडिपेंडेंट ने जो अपनी तहकीकाती अपना मकाला जो शाया किया उसमें लिखा है कि 10 में से 9 बच्चों को वहाँ पर बाज़ स्कूलों में सर की जुएं उनको सामना करना पड़ता है. और अमेरिका में बाज़ ऐसे मराकज़ भी वहाँ पे खुल गए हैं जो सर की जुएं जो हैं दूर करते हैं. आप जाइए वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे, वो आपका सर साफ़ कर देंगे, कार हेड वॉश का काम करेंगे, कार वॉश तो नहीं.
तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, नाज़रीन जब भी ये खाना खाएंगे तो आपकी वो हसीन खबर खाने के पीछे याद रहेगी. खैर चलते हैं अपनी मौजूद मेहमान की तरफ। और जी, जैसा आपने कहा सुना कि यहाँ पर हसन भाई ने एक बहुत ही नहायत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, और हम ये बात कर रहे थे कि ये गोरों में ज्यादा होती है, आपने बताया कि इस हवाले से क्या किया जाए डॉक्टर साहब, अगर एक घर में एक बच्चा जो है या कोई भी शख्स उसके सर में जुएं आ जाती है, पहले घर में कौन सा कदम उठाया जाए?
देखिए, इसकी बहुत सी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, जो FDA अप्रूव्ड है वो मेलाथॉन लोशन है, एक हफ्ता लगाएं, एक दिन लगाएं और तकरीबन 8 से 12 घंटे तक लगा रहने दें। फिर उसके बाद आप उसको जो है वो उसके बाद मैनुअली चेक करना है, एक हफ्ते तक आपने बालों को मैनुअल चेक करना है,
हाथ से यानी
जी,
ठीक है।
फिर उसके बाद अगर फ़ायदा नहीं होता फिर आप रिपीट करेंगे। ये जितने भी बेस्ट ट्रीटमेंट हैं इसके अलावा जो हैं, जैसे कि एथेनॉल है, बेंजाइल बेंजोएट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये सब की सब ट्रीटमेंट्स जो हैं वो 100% क्योर नहीं करती हैं आपके प्रॉब्लम को। इसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे इसका मजाज है जू का, और ये जो लाइस है ये क्या करती है, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, हर चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है,
अपने लिए गार्ड सा बना लेती है,
अपने लिए गार्ड सा बना लेती है। इसके लिए जो भी दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह के भी हार्श एनवायरनमेंट इसको देंगे, ये इन सेकेंड जनरेशन में ये ज़्यादा रेजिस्टेंट आएगी, तो वो फिर इस वजह से जो इसको पेस्ट कंट्रोल का जो ओनली ट्रीटमेंट है वो स्ट्रैटेजी है, मैनुअल केयर है। आप बार बार, मतलब आप एटलीस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन अपने बच्चों के सर को देखें, अपने बालों को देखें और मैनुअली उनको रिमूव करें, इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट आती हैं वो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर इसका 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बिल्कुल अंडे भी इसके जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर लेना मुश्किल है, लेकिन आप रूटीन में जैसे कि स्टीमिंग है बालों की
या गरम तौलिया करके अपने बालों में लपेट लीजिए आप,
स्टीमिंग है, लेकिन 54 डिग्री सेंटीग्रेड आपको प्रॉपर वो एक स्टीम सेशन से ही, इसी वजह से हम देखते हैं बाहर पॉलर में बच्चों को लेके जाकर स्टीम सेशन जिस तरह बताया है इन्होंने, तो वो उसी वजह से कि जो है स्टीम कंट्रोल किया जा सके, उनको डिहाइड्रेट किया जा सके। दूसरी जो चीज़ें हैं, हम कई दफ़ा देखते हैं इनको जो एक रूटीन में घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, तेल का इस्तेमाल है, तेल के इस्तेमाल से सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा स्लिपरी, जस्ट टू मेक टू फैसिलिटेट,
फिसल जाती हैं,
फिसल जाए और जो हेड जो लाइस कॉम्ब है उसमें आराम से ये निकल आए। और फिर इसके अलावा जो दूसरे जो तरीके आते हैं उनमें एथेनॉल का इस्तेमाल है या विनीगर का इस्तेमाल है। विनीगर के बारे में ये जो ब्लॉग्स हैं या वैसे ही आम जो है कि ये इसके जो अंडे हैं उनकी ग्लू कुक वीक कर देती है, तो इस वजह से जो है वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं।
एक चीज़ पूछना चाहूँगी सिरके के हवाले से, आपने यहाँ पर इशारा किया सफ़ेद सिरका या फिर जो हम सेब का सिरका, कोई फर्क नहीं पड़ता?
कोई फर्क नहीं है, बस उसका जो सिंपल है कि वो लूजन कर दे जो उसकी ग्लू है, तो ये एक सिंपल जो है टोटका टाइप सा है,
घर में हो,
कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो है स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके तो करें। फिर कई लोगों ने वेजलीन का इस्तेमाल करके भी जो है उससे भी जो है उन्होंने मैनुअली इनको रिमूव किया, तो जो क्योंकि देखें एक जो लाइस है उसका लाइफ साइकिल 30 दिन का है, तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद दूसरा लाइफ साइकिल स्टार्ट उसका हो जाएगा, दूसरी एक जनरेशन आएगी, तो ये ज़रूरी है कि आप अपना मैनुअल कंट्रोल जो है और मैनुअल केयर करें ताकि अपने जो अपने और अपने बच्चों के बाल साफ रखें।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये एंटी लाइस शैम्पू के हमने बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, एक बार लगाओ जुएं खत्म, फिर नहीं आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, खैर मुझे नहीं पता इसका, लेकिन जुएं खत्म हो जाती है, तो ये किस हद तक जो है ये ऑथेंटिक है और किस हद तक इस बात में सच्चाई है?
देखिए, ये जितने भी केमिकल्स हैं ये पेस्टिसाइड हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन भी है, स्किन एब्जॉर्प्शन भी है, यानी कि आप स्कैल्प पे लगाते हैं फिर आप 8 से 12 घंटे इनको रख के छोड़ देते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं और इनकी रिपीटेशन भी कंट्रोल्ड है, और मैंने जैसे बताया है कि ये जो जुएं हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देती हैं, तो इनका कुछ लोगों में फ़ायदा देखा गया, कुछ लोगों में ये बिल्कुल बेअसर हैं, क्योंकि उनमें मे बी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट आ गई है या रीइन्फेस्टेशन दोबारा से आ जाते हैं, तो जो चीज़ें रिसर्च से भी वाजिया है, जो वैसे भी जो मुमकिन है वो यही है, मैनुअल केयर
जी इसका ख्याल रखा जाए। अच्छा देखते हैं, बहुत से घर में जो है लोग जानवर पालने का भी शौक रखते हैं और काफ़ी लोग जो है काफी सफारे में हसासियत भी रखते हैं और अपने जानवरों का भी बाकायदा चेकअप करते रहते हैं इस हवाले से, और फिर कहते हैं कि बाज़ लोग भी नहीं रखते, तो जानवर से भी ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, इस हवाले से
सादे साहब का ये सवाल था कि हम लोग जो हैं वो उसमें जुएं जो है मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, तो क्या मुख्तलिफ जगहों पर भी मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की पाई जाती हैं या मुख्तलिफ नौइयत अलग होती है? उसके अलावा भी अब डॉक्टर साहिबा ने यह कहा कि 30 दिन इनका एक लाइफ साइकिल होता है, फिर अगली जनरेशन आती है, यानी एक साल में 12 नस्लों की परवरिश दे रहे हैं, कितनी दुआ देती होंगी।
हर नस्ल जो है पिछली नस्ल से और ताकतवर सामने आती है कि कितना मारोगे हमें, हम और भी आएंगे,
और भी आएंगे। अच्छा, ये बिल्कुल स्पीशीज मैंने जैसे बताया कि इंसान के अंदर जो है जुएं वो तीन हिस्सों में ब्रॉडली उसको ग्रुप किया गया है। सर की जुएं हैं, हेड लाइसेस है, फिर बॉडी लाइसेस हैं, फिर प्यूबिक लाइसेस हैं। प्यूबिक लाइसेस बड़ी होती हैं, थोड़ी सी साइज में चौड़ी होती हैं, और वो क्रैब उनको कहते हैं, उनका आम जो कॉमन नेम है वो क्रैब है।
डॉक्टर साहब, 2.5 मिनट का वक्त है हमारे पास, माफ कीजिएगा।
और सर, और जो बॉडी की जुएं हैं वो बॉडी की जुएं जो है वो पेस्ट से ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे आपने बताया था जानवरों के अंदर है। तो जानवरों में अगर जब आपको जिस्म में जुएं शामिल हो गई हैं, जिस्म पे आना शुरू हो गई हैं, फिर आप पेस्ट कंट्रोल करवाएं, और जो है और एनिमल्स को और पेट्स जितने भी हैं उनको आप अवॉइड करें। लेकिन चूंकि बॉडी की जो लाइसेस हैं और पेट लाइसेस हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ डिजीजेज और बैक्टीरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टाइफस जो है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो जानवर हैं वो भी आपसे अवॉइड करें और आप उनका चेक करवाएं। और आप देखें कि ऐसे जब जिस्म में जब आती हैं तो वो ना सिर्फ आपको ख़ारिश करने से ज़ख़म बनते हैं, वापस की जो है अच्छी खासी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शंस जो हैं वो भी इसमें आते हैं, और इसमें किसी और ऐसे लोगों में बुखार का जो है, जैसे कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि फीवर है ऑफ अननोन डायग्नोसिस, कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक परसिस्टेंट बुखार जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो रह रहा है।
ठीक है, अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी जगह मैंने ये देखा है, मैं किसी खास मुल्क के शहर की तरफ इशारा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन देखा है कि ठीक है जुएं हैं, इलाज नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रही, जो रहने दो, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरने का वादा भी साथ कर लेते हैं काफी लोग, तो क्या किया जाए इस हवाले से? कोई खास तो सा पेश आता है?
नहीं, बिल्कुल देखें ऐसा नहीं है। जो बच्चों में अगर आप देखें, ठीक है जिन बच्चों में आप देखेंगे और बहुत ज्यादा हेड लाइसेस हैं, उनके बिहेवियर और उठने बैठने में उनमें फर्क आ जाता है, एंग्जाइटी होती है, इरिटेबिलिटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, उनकी स्लीप्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि ये जुएं रात को ज्यादा एक्टिव होती हैं और वो बच्चे पुरसकून नींद नहीं ले पाते हैं। फिर दूसरी बात यह कि वो बहुत ज़्यादा लबाब जो हैं वो बनाते हैं, और आप देखिए जिस तरह बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो गोद के बच्चे में अगर बहुत ज़्यादा लबाब बना रहे हैं और दांत निकालने की उम्र से पहले या बाद में, तो बड़ी बूढ़ी औरतें जो हैं वो फ़ौरन देखती हैं कि नहीं, इस बच्चे के सर में जूं होगी, और वो निकल भी आती हैं।
अच्छा,
तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जूं से ऐसा नहीं है कि आप उसको फिर छोड़ दें, उसमें 30 डेज का है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो है आपने 30 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म करनी है। आपने हर टारगेट रखना है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने अपने बच्चे के सर को जो है वो चेक करना है और मैनुअली रिमूव करना है। दवाइयों में शैम्पू पे नहीं बिलीव करना, और हमने मैनुअली इसके ऊपर
अपने हाथ के जादू पर
जी अपने हाथ के जादू और खलूस से।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया खालिद, नहायत ही दिलचस्प मौजू, शायद हम इस मौजू को सरसरी लेते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन नहायत ही अहम मौजू, दिलचस्प मौजू, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें मालूमात फराहम की।